प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग छठवा, लेक्चर नंबर 477। ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः
सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम श्रुतात्मने नमः। प्रणमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सौवसाहूणं, सुर असुर नरपति वन्द्यने प्रविनष्टगाति कर्मणे प्रणमन करो धर्मकर्ता तीर्थ श्री महावीरने परिशेष तीर्थं कर अनेस सिद्ध शुद्धास्ति त्वने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्य चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने बंधु वणिहु मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिये रिते गणधरने अध्यापकोने सर्वसाधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनी ये नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये छठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 90 पर हम आगे 90 ये हमने 133 और 134 गाथा जो है वो दो एक साथ है उसको पढ़ा था। तो उसमें क्या बात हो रही है कि अमूर्त द्रव्य के हैं या अमूर्त जो द्रव्य है उनके गुणों को यहाँ बता रहे हैं। पहले तो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण की बात विस्तार से हुई थी, अब पुद्गल को छोड़कर बाकी अमूर्त द्रव्य है तो उनके गुणों की बात बताई हो तो जो हम सिद्धांत प्रवेशिका में बहुत पढ़े परंतु देखो उसमें से कितने उन्होंने जिसको भी सूक्ष्म पॉइंट्स बताए यहाँ पर। आकाश का तो अवगाहना तो कहते युगपत शब्द डाला, युगपत सभी को अवगाहना देने वाला। हाँ 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 ऐसा कहीं अन्यत्र नहीं है और ये कितना सटीक है क्योंकि एक एक क्षेत्रावक संबंध 6 द्रव्यों का आपस में है यानी वो एक दूसरे को अवगाहना तो देते हैं परंतु अपने क्षेत्र में जितनी लिमिटेड उतना ही अवगाहन देते हैं। पर ये कैसा है आकाश, आकाश तो परिपूर्ण अनंत प्रदेशी है और सबको अवगाहना उसके अनंत में भाग में सबको समेट देता है ये उसका अवगाहना गुण है यानी युगपथ सबको अवगाहना का हेतु हेतु निमित्त। वैसे ही धर्म द्रव्य के क्या हो एक साथ है गति करने वाले सभी जीव और पुद्गलों को गमन में हेतु होता है वो एक एक ही साथ है और उसमें भी आगे हम पढ़ेंगे फिर दोबारा वो पैराग्राफ। फिर अधर्म द्रव्य एक साथ स्थान परिणाम स्थिति हेतुत्व एक साथ सभी जीव और पुद्गलों को। काल की बात क्या ली कि समय वृत्ति ने जो उनका परिणमन एक समय में होता है तो एक समय में होता है तो तो समय जो बीतना जो है ना, टाइम पासेस, समय बीत गया हम कहेंगे, तो ये जो है वहां कोई अन्य द्रव्य होना चाहिए, वो काल द्रव्य है। उसको कहा था समय वृत्ति नो हेतु बनो, वो तो काल का ही नहीं, समय समय काल की परिणति समय समय है, और उतने एक समय में बाकी द्रव्य अपना अपना कार्य कर लेते हैं, ये वहां इसलिए वो समय का निमित्तपना बताए उन्हें, समय परिणति का निमित्त। अभी चैतन्य परिणाम जीव नो विशेष गुण है, यहाँ तो इतना ही लिया उन्होंने, उपयोग कहो या चैतन्य परिणाम कहो, जीव का विशेष गुण है। इसके बारे में आज दिन में बहुत बार मेरे ऐसे विकल्प चले कि वहां क्या बताया कि आकाश सबको एक साथ उगाहना दे रहा है। अभी आगे जो हमने अन्य जो दलील देखी थी ना, उसको पढ़कर फिर मैं बताऊंगी क्या कहना चाहती हूँ। ये नीचे का जो पैराग्राफ है ना, एवी ज रीते एकज काले गति परिणत समस्त जीव पुद्गलों ने लोक सुधी गमन नु हेतुपणु धर्म ने जनावे छे। कल पढ़ा था, फिर दोबारा पढ़ रही, कारण के काल ने पुद्गल अभी अन्य द्रव्य गति हेतु क्यों नहीं हो सकता, तो काल और पुद्गल सिंगल एक एक द्रव्य है, एक एक प्रदेशी है, तो गति में निमित्त है। गति किसको कहेंगे, एक प्रदेश से अन्य प्रदेश में गए जाएगा तो उसको गति कहेंगे, पर परमाणु एक ही प्रदेश व्याप्त है तो एक ही प्रदेश में कहां गमन होगा। गमन करने के लिए एटलीस्ट दो प्रदेश तो होने चाहिए, तो इसलिए वो गति में निमित्त नहीं हो सकते, क्योंकि गति में निमित्त कौन है, लोक तक फैले हुए धर्म द्रव्य है वो गति में निमित्त है, क्योंकि जहां तक धर्म है वहां तक जीव पुद्गल निमित्त वहां तक है, बस इतना बताना है। गमन तो अपने स्वयं की योग्यता से करते हैं, वो निमित्त पना है तो उसके प्रदेश इतने फैले है इसलिए वहां तक। आप कहेंगे जीव के भी प्रदेश फैले है, परंतु पूरे लोक तक कहां तक, वो केवल समुदाय में होते हमेशा तो नहीं होते हैं, इसलिए उसको भी निमित्त नहीं कहा। आकाश द्रव्य को भी नहीं कहा, यहाँ कहा ना देखो, क्योंकि आकाश द्रव्य को क्यों नहीं निमित्त कहा, आकाश अगर गति में निमित्त होता तो लोक और अलोक ऐसा भेद ही नहीं रहता, क्योंकि पूरे आकाश में जहां तहां गमन होता, जितना आकाश है वहां तक जीव पुद्गलों का गमन होता
लोक आकाश।
अगर आकाश गति में निमित्त होता तो लोकाकाश नाम का भेद ही नहीं होता, क्योंकि जीव पुद्गल पूरे आकाश में पाए जाते क्योंकि वहां तक गमन कर जाते, परंतु लोकाकाश का बिल्कुल सुनिश्चित उसकी सीमा है और वो कभी चेंज भी नहीं होती है। उससे क्या होता है सिद्ध, आकाश भी गमन में हेतु नहीं है, तो गमन के लिए वो उतने प्रदेश ही होना आवश्यक है, क्योंकि जीव पुद्गल कहां तक गमन करते हैं अपनी योग्यता से, तो लोक तक, तो वहां तक धर्म द्रव्य एक अखंड है, वैसे ही स्थिति में भी अधर्म द्रव्य एक अखंड है। तो यहां जैसे उन्होंने सिद्ध किया ना कि वो वहां तक फैले होना चाहिए, तो जीव जो है चैतन्य उपयोग उसका लक्षण है, यहां निमित्त नहीं लेना, क्योंकि जीव पर ही हम जीव है तो जीव की बात डायरेक्ट उसके लक्षण बता दिया, जीव का निमित्तपना नहीं बताया, जीव का लक्षण ही बता दिया। पर इसके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे हम तो सभी द्रव्य जीव में जानने जाते हैं, पर जीव को उनको जानने के लिए पूरे प्रदेश में फैलना पड़ता है क्या, तो कहीं नहीं, अपने में रहकर पूरे को जान लेते हैं, यानी स्वद्रव्य में रहकर अनंतानंत द्रव्यों को जान लेता है, स्व क्षेत्र में रहकर पूरा क्षेत्र सब जानता है, स्वकाल यानी अपनी एक समय की पर्याय में रहकर, वो उसका स्वकाल है, अपनी पर्याय उसका स्वकाल है, एक समय की पर्याय में रहकर तीन काल के सभी पर्यायों को जान लेता है, पूरे काल को जान लेता है, और भाव वो अपने भाव में रहकर अनंतानंत द्रव्यों के सभी भावों को, गुणों को भी और तीन काल के पर्यायों को जान लेता है। हाँ, अधर्म तो विरोधी है ना, अधर्म उसका कार्य का है, उसका निमित्तपना किसमें होता है, तो स्थिति में, तो गति से विरुद्ध है स्थिति, इसलिए वो भी उसका निमित्त नहीं बन सकता। ये कल बात आई थी ना, बहुत अच्छा ये पैराग्राफ कल हमने पढ़ा था, ये तो अभी हम वापस पढ़ना है। हाँ, अभी हमने देखा ना, हाँ शॉर्ट में देख लिया, अभी नीचे से दूसरी लाइन यहां से हम पढ़ेंगे। एवी ज रीते काल सिवाय बाकी ना समस्त द्रव्यों ने दरेक पर्याये સમય વૃત્તિનું હેતુપણું કાને જણાવે છે. સમય વૃત્તિ અને સમય કા બીતના જો હૈ વો સમય કિસકી પરિણતિ હૈ તો કહેતે વહાં કોઈ કાલ દ્રવ્ય હોના ચાહિએ, વો કાલ કો સૂચિત કરતા હૈ. યાને જીવ કા પરિણમન જો હૈ, પર્યાય જો હૈ, જીવ કા યાને સભી દ્રવ્યો કા પરિણમન એક સમય મેં હોતા હૈ. તો એક સમય જીતના કાલ જો પાસ હોતા હૈ, બીત જાતા હૈ, તો ઉસમેં વો સમય રૂપ પરિણમન કરને વાલા કોઈ વહાં દ્રવ્ય હોના ચાહિએ, વો કાલ દ્રવ્ય. યે કહે રહે સમય વૃત્તિ યાને સમય રૂપ જો પરિણમન હો રહા હૈ, કિસકા હૈ વો? વો કાલ દ્રવ્ય કા હૈ. ઓર ઉતને સમય મેં બાકી છ દ્રવ્ય અપના અપના પરિણમન કર લેતે. એવી જ રીતે ફિર પડતી હું, કાલ સિવાય બાકીના સમસ્ત દ્રવ્યોને એને અન્ય પાંચ દ્રવ્યો કે લીએ દરેક પર્યાયે સમય વૃત્તિનું હેતુપણું કાળને જણાવે છે. યહાં પ્રશ્ન પૂછતા હે કાલ કો કોણ હૈ, તો સ્વયં હિ સમયરૂપ પરિણમિત હોતા હૈ, તો ઉસકે લીએ વહાં સ્વયં હિ ઉસકે સમય વૃત્તિ તો હો હી રહે, વહાં પર વહી ઉસકા પરિણમન ભી હૈ. કારણ કે તેમણે સમય વિશિષ્ટ વૃત્તિ તેમને અને સભી દ્રવ્યો કો સમય વિશિષ્ટ વૃત્તિ કારણાંતરથી સધાતી હોવાતી, યાને વહાં કોઈ અન્ય કારણ હોના ચાહીએ, અર્થાત તેમને સમયથી વિશિષ્ટ એવી પરિણતિ, ક્યોંકિ સભી દ્રવ્યો કી પરિણતિ એક સમય વાલી હૈ. તો સમય યે જો કુછ કાલ કી બાત હૈ, ઉસકા યે જો વો પરિણતિ હોની ચાહીએ, વો કિસી અન્ય દ્રવ્ય કી હૈ. તે અન્ય કારણથી થતી હોવાને લીધે સ્વતઃ તેમને તે સમય વૃત્તિ હેતુત્વ સંભવતું નથી. અને દ્રવ્યો મેં અપના અપની પર્યાય તો વો કર રહે, પણ સમય વૃત્તિ અને સમયરૂપ પરિણામના દ્રવ્યો મેં નહીં હો રહા હૈ, વો કાલ દ્રવ્ય મેં હો રહા હૈ. એવી જ રીતે ચૈતન્ય પરિણામ જીવને જણાવે છે. કારણ કે તે ચેતન હોવાથી શેષ દ્રવ્યોને તે સંભવતો નથી. એ વિશેષ ગુણ કેવું બતાયા ઇસકો? અમૂર્ત દ્રવ્ય બતાયા, હરેક કા અપના અપના એક વિશેષ ગુણ બતાયા. તો જીવ કા વિશેષ ગુણ કોણ સા હૈ? તો ચેતન. ઓર ચેતન પરિણામ લિયા, ચૈતન્ય પરિણામ લિયા, એને જાનંદ રૂપ જો કાર્ય હો રહા હૈ, વો જીવ કો વહાં નક્કી કરતા હૈ, જીવ કો સિદ્ધ કર રહા હૈ, પ્રસિદ્ધ કર રહા હૈ, એને વો લક્ષણ કે દ્વારા યે જીવ હૈ યે જાનને મેં આતા હૈ. આ પ્રમાણે ગુણ વિશેષથી દ્રવ્ય વિશેષ જાણવું, દ્રવ્ય વિશેષ અને વિશિષ્ટ દ્રવ્ય યે હમ કૈસે પહેચાનતે હૈ? તો ઉનકો વિશિષ્ટ અને વિશેષ ગુણો કે દ્વારા દ્રવ્યો કી પહેચાન હોતી હૈ. ઇસી કા ભાવાર્થ પૂર્વે દર્શાવ્યો તેમ, યાની જૈસે પહેલે બતાયા હૈ વૈસા, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણથી પુદગલ દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ જણાય છે. એ તો પહેલે 132 ગાથામાં ઉસકે પહેલે હો ગયા. અહીં અને અભી ગાથામાં અમૂર્ત દ્રવ્યોનું અસ્તિત્વ તેમના વિશેષ લક્ષણોથી પ્રકટ કરવામાં આવ્યું છે. હમ તો એકમાત્ર પુદગલ કો હી માન લેતે, ઉસી કા અસ્તિત્વ હૈ. અરે અપના સ્વયં કા જીવ કા અસ્તિત્વ હૈ ભાઈ કબૂલ કરને કે તૈયાર નહીં? કોણ? જીવ સ્વયં. તો અન્ય જો અમૂર્ત દ્રવ્ય હૈ ઉસકા ભી અસ્તિત્વ કૈસા માનેગા? વો કિસકા અસ્તિત્વ માન રહે? જો ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા જાને જાતે હૈ ઉન્હી કા અસ્તિત્વ માનકર બેઠા હૈ. ઓર ઉસી મેં કહી યે મેં હું, યે મેરે હૈ, યે બાત ઉસકી કલ્પના સે બાત ચલતી હૈ. ઇસલિયે યહાં તો લક્ષણો કે દ્વારા યે સભી દ્રવ્યો સિદ્ધ કિયે હૈ, છહ દ્રવ્ય હૈ. ઓર ઉનકે વિશેષ લક્ષણ અમૂર્ત હોને પર ભી વો ઉનકે લક્ષણ કે દ્વારા જાનને મેં આતે હૈ, યે કહે રહે હૈ યહાં પર. કેવલી ભગવાન અતિ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન સે તો જાનેંગે, ઉનકો સ્પષ્ટ પ્રત્યક્ષ જાનેંગે, પણ હમ આપ ભી ઉનકે લક્ષણો કે દ્વારા ઉસકો નક્કી કર સકતે હૈ. યહાં ક્યા કહેતે? દેખો ચૈતન્ય પરિણામ રૂપ લક્ષણ અનુભવમાં આવતું હોવાથી, ઇસકા અર્થ ક્યા હૈ? દક્ષાબેન બોલો. દેખો દેખો ચૈતન્ય પરિણામ એને ક્યાં? જાનંદ રૂપ કાર્ય. તો હર સમય અમને કુછ ને કુછ જાનને જાન રહે ને, ઓર હમ જાન રહે યે હમારે અનુભવ મેં આ રહા હૈ, યે કિસી કો પૂછના નહીં પડતા હૈ. આપ કહેંગે ક્યા બોલ રહે, કુછ નહીં સમજા. યે કુછ નહીં સમજા યે કિસને બતાયા આપકો? હા યે તો હમને, વો તો હમારી ચૈતન્ય પરિણતિ હૈ. તો દિનભર તો હમ ક્યા કર રહે? તો જાનન 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 કર રહે. કભી ઇસકો જાના, કભી કિસકો જાના, કભી ક્યા જાના,
तो ये जानना जानना ये हमारा लक्षण है, इसको कहेंगे प्रकट लक्षण है। प्रकट लक्षण है हम जानते हैं कि ये हमारा जानना चल रहा है, इसलिए कहते हैं चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव में आउत हुआ थी। ये हमें ख्याल में आता है कि हमारा जानंद रूप कार्य चल रहा है, ये हमारे अपने ख्याल में आ रहा है। अनंत जीव द्रव्यों अस्तित्व जनाये छे, यानी अन्य भी जीवों का जानंद रूप कार्य चल रहा है ये भी हम अनुमान से जान सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व जाना जाता है। जीवादि समस्त द्रव्यो जेना निमित्त, जीवादि समस्त कहने से सभी द्रव्य आ गए, जेना निमित्त अवगाह पामे छे, किसके निमित्त से अवगाह पामते हैं, आकाश द्रव्य के, एवं कोई द्रव्य होऊ जोइए, यानी इतने सभी द्रव्य जिसमें रहते हैं अवगाह ना पाते हैं, ऐसा कोई एक अखंड बड़ा द्रव्य होना चाहिए, वो कौन है, आकाश द्रव्य। ते द्रव्य लोकालोक व्यापी आकाश छे, लोकालोक यानी लोक और अलोक को व्याप्त करने वाला ऐसा आकाश, आकाश एक ही द्रव्य है, उसके दो टुकड़े नहीं है, उसके जितने पार्ट में जितने क्षेत्र में अन्य सभी द्रव्य पाए जाते हैं उसको हम लोक कहेंगे, लोकाकाश कहेंगे, और बाकी बाहर वाला अलोकाकाश। परंतु आकाश द्रव्य कैसा है, लोकालोक व्यापी है, और धर्म द्रव्य कैसा है, लोक व्यापी है, उसको भी व्यापी द्रव्य कहते हैं, परंतु लोक तक सीमित है ना, पूरे लोक में व्याप्त है, अधर्म भी पूरे लोक में फैला हुआ है। जीव पुद्गलो गति करता जनाय छे, यानी हमारे क्या जानने में आ रहा है कि जीव और पुद्गल गमन करते हैं, ये हमारे ख्याल में आता है, क्योंकि ये चीजें भी यहां से वहां जाती हुई, भले हमारी मान्यता क्या थी कि हम उसको ले जाते हैं, परंतु वहां उनका गमन हो रहा है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, ये तो बात हमारे ख्याल में आती है। तो जीव पुद्गलो गति करता जनाय छे, तेथी जेम माछला ने गतिमा निमित्तभूत जल छे, तेम जीव पुद्गलों ने गतिमा निमित्तभूत कोई द्रव्य होवू जोइए, ये तो सिद्ध कर रहे लॉजिक से कि गमन है ना, पर उदाहरण कैसे देंगे, माछले को भी धर्म द्रव्य तो है ही, वो तो यूनिवर्सल सब जगह है, परंतु हम आपको समझाना है, दृष्टांत देना है, तो जो हमें मालूम है ऐसा उदाहरण देते हैं। तो जैसे जेम माछला ने गतिमा निमित्तभूत जल छे, तेम जीव पुद्गलों ने गतिमा निमित्तभूत कोई द्रव्य होवू जोइए, ते द्रव्य लोकव्यापी, लिखा नहीं, यहाँ लोकव्यापी, और आकाश के लिए क्या बताया था, लोकालोकव्यापी, और धर्म के लिए लोकव्यापी, क्योंकि जीव पुद्गलों का गमन कहाँ तक है, तो लोक तक, लोक के अंदर अंदर उसकी सीमा है, तो एक ही द्रव्य है और वो लोकव्यापी धर्म द्रव्य छे। जेम मनुष्य ने स्थितिमा निमित्तभूत पृथ्वी छे, तेम जीव पुद्गलों ने स्थितिमा निमित्तभूत कोई द्रव्य होवू जोइए, जैसे चलते हुए जीव को वहां स्थित होना है, तो नीचे जमीन है तो वहां पर वो खड़ा रह गया, वहां वो वृक्ष का भी उदाहरण है, वृक्ष की छांव, पथिक को वृक्ष की छांव, तो छांव वहीं बुलाती नहीं, अभी रुको थोड़ा यहां पर, वो पकड़ के नहीं रखती है, जीव स्वयं गति कर रहा था वो स्वयं रुक गया, ऐसे यहाँ पर वो धर्म अधर्म द्रव्य होना चाहिए, और वो भी कैसा है, ते द्रव्य ने तो अधर्म द्रव्य जो है लोकव्यापी अधर्म द्रव्य छे। अब जेम कुम्हार ना चक्र ने फरवामा खीली निमित्त भूत छे, कुम्हार का चक्र घूमता है तो खीले के ऊपर घूमता है, वो फिक्स है वहां पर और वहां ये घूम रहे, तेम काल सिवायना सर्व द्रव्यों ने परिणमन मा निमित्तभूत कोई द्रव्य होवू जोइए, ते द्रव्य असंख्यात कालानुओ छे के जेमना पर्यायो समय घड़ी दिवस वर्ष इत्यादि रूपे व्यक्त थाय छे। तो समय 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 वो उसका परिणमन है, और वहां जीव अपने 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 पर्याय 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 कर रहा है, वो पर्याय कितने, तो एक समय में बीतती है, इसलिए वो समय नाम का कोई परिणमन करने वाला द्रव्य वहां होना चाहिए, ये बात वहां घटित हो जाती है। आ प्रमाणे गुण भेद थी द्रव्य भेद नक्की थयो, ये तो हो गई अमृत चंद्राचार्य की टीका और उसका भावार्थ। अब हमको पीछे जाना है, जयसेन आचार्य की टीका पढ़ेंगे 89 पेज। 88 पर तो अमृत चंद्राचार्य की संस्कृत में है और ये जयसेन आचार्य की संस्कृत टीका है। अथ आकाशादि अमूर्त द्रव्याणाम विशेष गुणान प्रतिपादयति। यानी अब यहाँ पर आकाश आदि, आकाश आदि में किसको लेना? हाँ, पुद्गल को छोड़कर। हाँ, आकाश है, फिर जीव है, धर्म अधर्म और काल है। तो आकाश आदि अमूर्त द्रव्यों के विशेष गुणों का कथन करते हैं। विशेष गुणान प्रतिपादयति। आकाशस्य अवगाहो, आकाशस्य अवगाह हेतुत्वम। जैसे संस्कृत में आकाशस्य और अवगाह स्या होता है, वहाँ प्राकृत में स का सा होने का नियम नहीं है। वहाँ स्वरों में वो तो चलता है, वो का आ होना चाहिए ऐसा वहाँ नियम नहीं है। स्वरों में वो कुछ भी चलता है, अ उ ऋ उसमें सब चलते हैं। तो आकाशस्य अवगाहो यानी आकाशस्य अवगाह हेतुत्वम, यानी कौन से द्रव्य का कौन सा गुण है, विशेष गुण उसकी बात कर रहे हैं। धम्म दव्वस्य, वो डबल द उन्होंने गुजराती जैसा निकाला है, वो ऑर्डिनरी द होना है, डबल द क्यों किया?
इधर भी है प्राकृत में
धम्म दव्वस्य। हाँ, परंतु वो डबल द, एक मिनट मैं जरा इसमें से बताती हूँ आपको, पेज 133 वाली है ना,
ये डबल द न चाहिए,
वहां पर भी ऐसा ही लिखा है धम्मत दव्वस। वहां पर भी धम्मत दव्वस ही लिखा,
डबल द है,
डबल द लिखा है, ठीक है। हाँ, लेकिन धम्मदव्वस्य गमना गमना हेदुत्तम, गमन हेदुत्तम चाहिए, गमना कैसा होगा, गमन हेदुत्तम, गमन करना, गमना नहीं, गमन हेतुत्तम। वो बोल्ड में गमना लिखा है ना,
सेकंड लाइन सेकंड वर्ड,
मूल गाथा में नहीं है, यहाँ पर हो गया है। तो धम्मत दव्वस्य गमन हेतुत्तम यानी धर्म द्रव्यस्य गमन हेतुत्वम यानी गति हेतुत्व जिसको हम कहेंगे। धम्मेदर धर्म से इतर यानी अधर्म द्रव्य। धम्मेदर दव्वस्य दु गुणो पुणो ठान कारणदा यानी फिर पुनश्च धर्मेतर द्रव्य ने अधर्म द्रव्य का गुण क्या है, ठान कारण स्थान कारणपना यानी स्थिति हेतुत्व। धर्मेतर द्रव्य से तो पुनः स्थान कारणता गुणो भवती इति प्रथम गाथा गता, 133 नंबर की पहली गाथा। कालस्य वट्टना से कालस्य वर्तना स्यात् गुणः, यानी काल का वर्तना गुण है। गुणो वो उगोत्ति अपणो बनी दो, गुणो वो उगने उपयोग गुण आत्मा का बताया है। ज्ञान दर्शनोपयोग द्वयम इति आत्मनः गुणो भुणितः, यानी ज्ञान दर्शन दो है ना, उपयोग द्वय, द्वय नहीं दो उपयोग है, चैतन्य कहेंगे तो एक कहेंगे, उसके भेद करेंगे कि ज्ञान उपयोग दर्शन उपयोग दो कहेंगे, ये किसके आत्मा का गुण बताया है। नेया संखे वादो गुणा ही मुत्तिप हीणानम एवं संक्षेपात यानी संक्षेप से अमूर्त द्रव्याणाम गुणा गेया इति, अमूर्त द्रव्यों के गुण जानने चाहिए। तथा ही वही इस प्रकार है, सर्व द्रव्याणाम साधारणम अवगाह हेतुत्व विशेष गुणत्वात् एव अन्य द्रव्याणाम असंभव वो लस कैसे लगाया अभी रखा है तो फिर देखना पड़ता है क्या कहते हैं। सर्व द्रव्याणाम साधारण अवगाहितत्व विशेष गुणत्वात् एव अन्य द्रव्याणाम असंभवत सदाकाशम। असंभवत चाहिए
वत,
हाँ असंभवत वर्त आधा, वो आधा किया है ना, स को लगाया तो वो पूरा और तो आधा वत करना और वो आधे त को स लगाना, यानी वो पढ़ेंगे असंभवत
सदाकाशम।
असंभवत सदा ने सत आकाशम निश्चित होती, असंभवत सत आकाशम निश्चित होती। यानी उसे आकाश नक्की हो जाता है। यानी वो अन्य द्रव्यों में असंभव है। फिर से इसका अर्थ देखते देखो, तथा ही के आगे सर्व द्रव्याणाम साधारणम अवगाह हेतुत्वम, यानी सर्व द्रव्यों में साधारण, यानी सर्व द्रव्यों को साधारण यानी एक साथ समान रूप से अवगाहन देना, तो साधारण अवगाह हेतु तो समान रूप से सभी को एट ए टाइम युगपत अवगाहना देना क्या अवगाहना में निमित्त होना। विशेष गुणत्वात् एव यानी वे विशेष गुण होने से अन्य द्रव्याणाम असंभवत सत, यानी अन्य द्रव्यों को संभव नहीं है असंभव होते हुए आकाशम निश्चित होती, यानी आकाश को वो नक्की करता है, आकाश द्रव्य ही उसका हेतुपना वो नक्की करता है। ये हो गया ना, गति परिणत समस्त जीव पुद्गलानाम एक समय साधारणम गमन हेतुत्व, यानी गति रूप परिणत ऐसे समस्त सभी जीव और पुद्गलों को एक समय में सबको साधारण, सबको एट ए टाइम यानी सबको कॉमन गमन हेतुत्व जो है वो विशेष गुण होने से अन्य द्रव्याणाम असंभवत सत धर्म द्रव्यम निश्चिन होती, यानी अन्य द्रव्यों के असंभव होते हुए, वो हमने देखा था अन्य द्रव्यों को क्यों असंभव है, क्योंकि पुद्गल और काल तो एक प्रदेशी है, जीव तो अपने अपने वो लोक के असंख्यात पे भाग प्रमाण ही उसका क्षेत्र है, भले समुद्घात में केवल वो पूरा लोक व्याप्त हो सकता है इसलिए वो भी संभव नहीं है, अधर्म तो विरोधी उसका कार्य है, इस तरह से हमने देखा था। और आकाश यदि उसका होता तो लोक और अलोक भेद ही नहीं होता, जीव और पुद्गल सर्वत्र गमन करते, ये हमने पहले देखा था, इसलिए अन्य द्रव्यों के लिए वो असंभव होने से धर्म द्रव्य का निश्चय हो गया। तथैव च उसी प्रकार स्थिति परिणत समस्त जीव पुद्गलानाम एक समय साधारणम स्थिति हेतुत्व विशेष गुणत्वात् एव अन्य द्रव्याणाम असंभवत सत अधर्म द्रव्यम निश्चिन होती। ये असत होता है ना, तो का आधा फिर अ लिया और आगे द के कारण वो ध के कारण वो सॉफ्ट हो गया, द हो गया, त का द हो गया, तो सभी द्रव्यों के युगपत यानी एट ए टाइम यानी स्थिति परिणत जिसे समस्त जीव और पुद्गलों के एक ही समय में साधारणपणे स्थिति हेतुत्व विशेष गुण के कारण और अन्य द्रव्यों को वो संभव नहीं होने से अधर्म द्रव्य नक्की हो जाता है। सर्व द्रव्याणाम युगपत पर्याय परिणति हेतुत्व विशेष गुणत्वात् एव अन्य द्रव्याणाम असंभवत व रह गया पूरा, संभवत हुआ है ना, असंभवत सत काल द्रव्यम निश्चिन होती। क्या कहते हैं, सभी द्रव्यों को युगपत यानी एट ए टाइम उनके पर्याय की परिणति, पर्याय परिणत होती है उसका, उसमें हेतुपना वो विशेष गुण होने से और अन्य द्रव्यों में वो संभव नहीं होने से काल द्रव्य नक्की हो जाता है। सर्व जीव साधारणम सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन द्वयम विशेष गुणत्वात् एव अन्य अचेतन पंच द्रव्याणाम असंभवत सत शुद्ध बुद्ध एक स्वभावम परमात्म द्रव्यम निश्चिन होती। देखो हमेशा जैसेनाचारी की विशेषता है, परमात्मा द्रव्य पर घटित करेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फिर पढ़ते हैं। सर्व जीव साधारण, सभी जीवों में पाए जाने वाले, साधारण यानी कॉमन है ना। सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन द्वयम्, ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन को यहाँ गुण कहा, जैसे अनंत चतुष्टय गुण कहा था, सभी द्रव्यों में है, वो स्वभाव की बात हो रही है, गुणों की बात कर रही है, पर्याय की नहीं। तो ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये गुण सभी द्रव्यों में, जिसको हम अनंत ज्ञान अनंत दर्शन ये गुण बताया है, वो सभी जीवों में कॉमन है, सामान्य सभी जीवों में पाया जाता है। तो कहते हैं सभी जीवों में साधारण ऐसा सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन द्वय। सकल विमल यानी संपूर्ण, विमल यानी निर्मल, ऐसा जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो है, वो विशेष गुण होने से अन्य अचेतन पांच द्रव्य उनके वो असंभव होते हुए शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्य निश्चिन्न होती। उससे क्या घटित होता है, शुद्ध बुद्ध एक परमात्म द्रव्य नक्की होता है, यानी जीव द्रव्य नक्की हो जाता है। अयम अत्र अर्थ, यहाँ यह अर्थ है, यद्यपि पंच द्रव्याणि जीवस्य उपकारं कुर्वन्ति, तथापि क्या कहते हैं, यद्यपि यानी चूंकि पांच द्रव्य है वो जीव का उपकार करते हैं। दक्षाबेन क्या लिखा है, जीव को फेवर करते लिखा ना, क्या लिखा, उपकार करते, क्या फेवर सहाय ऐसा कर रहे। अरे एक द्रव्य दूसरे के द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते, तो उपकार करते क्या है, निमित्त, निमित्त को उपकार ऐसा एक नाम आता है। तो परस्पर उपग्रह जीवाना, उपग्रह कहो उपकार कहो, उसका अर्थ क्या है, निमित्त होते, एक दूसरे को मदद करना चाहिए ऐसा उसका अर्थ नहीं होता। क्या लिखा है देखो, फिर से इसको पढ़ेंगे यहां से, अयम अत्र अर्थ है ना नीचे से तीसरी लाइन, वो यद्यपि यानी चूंकि पंच द्रव्याणि यानी पांच द्रव्य जीवस्य उपकारं कुर्वन्ति, यानी जीव के निमित्त है, ये जीव के लिए क्या निमित्तपना बनता है, ऐसी उनकी परिभाषा एक एक लाइन में बताई। गुण कितने उन द्रव्यों में, अनंत। तो हमारे से क्या लगता हुए क्या संबंध है, बस उतनी बात बताई, एक एक वाक्य में उसके एक एक का गुण बता दिया, कोई अवगाहना में निमित्त है, कोई चलने में, कोई रुकने में, वो सब बता दिया। तो जीवस्य उपकारं कुर्वन्ति तथापि, ऐसे होने पर भी, तथापि तानि दुख कारणानि एव इति ज्ञात्वा अक्षय अनंत सुखादि कारणं विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावं परमात्म द्रव्यं तदेव मनसा ध्येयं वचसा वक्तव्यं कायेन तत् साधकं अनुष्ठानं च कर्तव्यम् इति। ये पूरे का पूरा सर्वाणु जिसको कहेंगे वो बता दिया। क्या कहा, ये पांच द्रव्य जीव के लिए निमित्तभूत होने पर भी, तथापि क्या है, तानि यानी वे दुख कारणानि एव इति ज्ञात्वा, वे दुख के ही कारण है ऐसा जानकर, क्योंकि जब उसका लक्ष्य करेंगे तो परलक्ष्य हुआ, परलक्ष्य के तो सुख होगा नहीं, तो कहते दुख के ही कारण है ऐसा जानकर फिर क्या करना, अनंत सुखादि कारणम ज्ञात्वा, कैसा सुख, अक्षय अनंत सुखादि कारण, अक्षय सुख और वो अनंत सुख, आदि में अन्य भी ले लिया, उसका कारण क्या है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावम परमात्म द्रव्य, कि परमात्म द्रव्य मैं स्वयं कैसा हूं, तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी हूं। वो केवल ज्ञान होने पर होगा उसकी बात नहीं, वो तो पर्याय की बात है, अभी स्वभाव कैसा है, तो विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी मैं हूं, परमात्म द्रव्य हूं। तद एव मनसा ध्येयम्, उसी को मन में उसी का ध्येय बनाना है। वचसा वक्तव्यम यानी उसी को वाणी के द्वारा कहना योग्य है, वक्त बोलना योग्य है। कायेन तत् साधकम अनुष्ठानम च कर्तव्यम इति, और काय के द्वारा, शरीर के द्वारा भी उसी का अनुष्ठान यानी जो क्रिया कहते हैं ना, जो क्रियाकांड वगैरह जो है शरीर के द्वारा होते, वही कर्तव्य होना चाहिए, ये कह रहे हैं। यानी मन से, वचन से और काय से उसी की बात होनी चाहिए, किसकी, हम तो दुनिया की करते हैं। अब ये हो गए दोनों ही आचार्यों की टीका। अब गुरुदेव इसको और खोलेंगे, हम पढ़ेंगे 92 पेज पर आना, 92। ये तो गाथा तो हमने पढ़ी थी, अभी डायरेक्ट टीका का प्रवचन है ना। सर्वज्ञ धर्मनु मूल छे, अने सर्वज्ञ यानी सर्वज्ञ भगवान ने जे छ द्रव्य जोया, जोया करते तो ये कह नहीं के बता नहीं, जाने जाने उन्होंने, अनुभव नहीं कहेंगे, अनुभव अपनी पर्याय का होता है। यह सभी ज्ञान के ज्ञेय है, सभी द्रव्य जानने में आ रहे हैं। जैसे हमने आपको बहुत बार बताया ना, वेदन कहो या अनुभव कहो, नहीं समझे, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत पीड़ा हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ने जांचा, लक्षण देखे, तो उन्होंने जाना इसको बहुत पीड़ा हो रही है। अनुभव किसने किया? हमने किया है, पेशेंट ने किया है, ऐसा क्या कहते हैं? सर्वज्ञ धर्मनो मूल छे, अने सर्वज्ञ जे छह द्रव्य जोया, एना लक्षण एना गुण शू छे, अथवा एना परिणाम द्वारा ए वस्तु जनाय, ए परिणाम शू छे। हमने हमेशा देखा था कि वस्तु जो जानी जाती है, आप कहेंगे गुण उसके लक्षण है, हाँ, पर गुण का प्रकट क्या अवस्था है, वो अवस्था के द्वारा हम गुण को या द्रव्य को नक्की करते। जैसे पुद्गल में हमने देखा था, वो हल्का भारी रूखा चिकना है, ठंडा गर्म है, या तो कोई हरा पीला है, तो उसके जो पर्याय है उनके द्वारा हमने वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल नक्की किया था। यही कहते हैं कि वो प्रकट जो उसकी पर्याय है उसके द्वारा हम द्रव्य को नक्की करते। क्या कहा? एना गुण शू छे, अथवा एना परिणाम द्वारा, परिणाम यानी उसके पर्यायों के द्वारा ए वस्तु जनाय, ए परिणाम शू छे, क्योंकि हमको अलग अलग वस्तुएं है छह द्रव्य भगवान ने बताए हैं, तो उनके छह द्रव्यों के लक्षण जुदे जुदे है, तो उनको उनकी परिणति के द्वारा, उनके लक्षण के द्वारा हम उनको पहचान सकते। एनु वर्णन छे, सर्वज्ञ परमेश्वरे छह द्रव्य जोया छे अने एम छे। देखिए, हमें भी जैसे जितने द्रव्य है उसको वैसा ही जानना चाहिए। आप कहेंगे हमारे पास केवल ज्ञान कब है, हम जब केवल ज्ञ हो जाएंगे तब जानेंगे, नहीं, अभी आपको नक्की करना है, आपके शुद्ध ज्ञान में ही वो नक्की करना है। तो कैसे करेंगे? पहले में पहले सर्वज्ञ भगवान ने जो जान कर बताए है वो आगम से हमें अभी आज उपलब्ध है, क्योंकि आचार्यों ने उस पर वो सभी शास्त्र रचना की है और हमें ये सब वस्तु का स्वरूप बताया है। तो छह द्रव्य है, उनके लक्षण है, वो आगम में बताए, और वो बताने तो उसका तरीका भी बताया है, अनुमान से भी हम कैसा उसको नक्की कर सकते हैं, और वो वही वो द्रव्य उसका निमित्त ये भी कैसा नक्की करते हैं, अभी हमने पढ़ा टीकाओं में। यही यहाँ पर भी कह रहे कि यहाँ इसका वर्णन है, सर्वज्ञ परमेश्वरे छह द्रव्य जोया छे अने एम छे। वस्तु स्थिति भी ऐसी है और हमें जैसा है वैसा नक्की करना है, तो हमने सही जाना। प्रश्नकार पूछते, सात केम न जोया? समाधान, छे नहीं तो क्या थी जोवे? क्योंकि ज्ञान उसी को कहेंगे जो है वैसा जानता है, वो ज्ञान जो बताया था ना, अधिक जानेगा कोई सात छे के बदले सात द्रव्य जानेगा तो उसका ज्ञान खोटा होगा।
और कम जानेगा तो?
कम जानेगा वो भी मिथ्या ज्ञान है, उससे कम जाना या विपरीत जाना, अधिक जाना, कम जाना या विपरीत जाना, वो सारा मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। वो आता है रत्नगण शौकाचार में, सम्यक ज्ञान अधिकार दूसरा अधिकार, एक दो पेज का ही है, बस उसमें ये बातें लिखी है। हमें क्या लगता है, कोई भी जो चरणानुयोग का ग्रंथ है कोई भी निकालो, पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा अधिकार है सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर चारित्र अधिकार चालू हो जाता है। आप कहेंगे इतने व्रत होते इतने होते सब वर्णन आता है, हाँ आता है, पर कब? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बताने के बाद। ये तो मालूम नहीं ना, हमको तो लगता है कि केवल वो आचरण किया तो चारित्र हो गया, ऐसा ही नहीं। तो कहते छे नहीं तो क्या थी जोवे, हो एटला जोवे ने, छे एटला जोया, छह छे यानी सिक्स है ना, छ छ छ नी साथे छ नो मेल खाई छे छ और छ है ना, ए वस्तु एटली छे, एटली छे ने जाति की अपेक्षा छ ही द्रव्य है, छ प्रकार के द्रव्य जिसको हम कहेंगे। जीव एक प्रकार हो गया, उसमें जीव अनंत है जुदे जुदे। अपन सबकी जाति एक कहेंगे तो हम जीव द्रव्य कहेंगे सबको मिलकर, अने ते पण आत्माना ज्ञान परिणाम में एक समय छ द्रव्य एना गुण अने परिणाम आदि जाने एवी एक समय ना परिणाम नी ताकत छे। वही तो मैं कहा ना, मैंने सोच रही थी जैसे आकाश एक साथ सभी को युगपत अवगाहना देता है, वैसे एक समय की ज्ञान की पर्याय युगपत सबको एट ए टाइम जान लेती है अपने में रहकर। यानी वो उस एक समय की पर्याय की ज्ञान पर्याय की ताकत कितनी है, एक समय की, और वो तो पर्याय है। और ऐसा गुण हमारा पास है, एक नहीं अनंत गुण है। ये तो ज्ञान की इसलिए बात करते हैं, वो प्रकट लक्षण है इसलिए उसमें समझाया जाता है। क्या कहते हैं, एवी एक समय ना परिणाम ने ताकत छे, ये ताकत नु माप अहींथी बतावे छे के आवा द्रव्यो छे एना गुणो छे एनी पर्याय छे। ये तो ज्ञान नहीं तो जाने हैं सब, और यहां बता रहे एने जेने पर्याय मां जाण्यू एने कह्यू, कहीं एटले वाणी द्वारा निकलू, क्योंकि मैं सबको बता के जाऊंगा तो ही लोग समझेंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि वो तो वीतरागी है, ये मैंने जाना इसलिए सबको बताऊं तो सही। हमको क्या होता है कोई चीज हमें जानने में, कब जाके दूसरों को बताओ ऐसा हो जाए। ये इतने सब मोबाइल पर क्यों चलते, व्हाट्सएप और ये और वो उनके तो हाँ, तो मैंने ये जाना तो दूसरे को भी बताओ ऐसा आदत है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं लगता, तीनों काल के सभी पर्याय युग पर जान लिए। तो वाणी द्वारा निकलू एवी अनंत पर्याय नो धरनार, आहा हा, ऐसा नहीं कि अभी ये होने वाला है अरे जरा जागो इसको टालो, ऐसा कोई बताएंगे कि नहीं बताएंगे। द्वारका जलने वाली है अभी ऐसा उपाय करो, ऐसा बता के क्यों नहीं गए, उपाय क्यों नहीं बताए उन्होंने बताओ। हाँ और हम होने वाला है कोई जानकर उसका उपाय करने लग जाते क्यों, या तो होने वाला नहीं है या तो हमारा विश्वास नहीं है। क्योंकि ज्योतिषों के पास जाके के अपने हाथ कहते हाथ दिखा कर अवलक्षण ऐसा कहते मराठी में, क्या होने वाला है जानने की उत्सुकता। और फिर कोई हम नहीं चाहते ऐसी कोई घटना होने वाली तो क्या करे उपाय, तो अमुक ये पूजा करो ऐसा करो वैसा करो सब चलती है। ये सब जीवों के मिथ्या बुद्धि से सारे धंधे जोर शोर से चलते रहते हैं।
नहीं पर हम पूछते हैं ज्योतिषी को कि हमारा आयु कितनी बाकी है, तो किस लिए देखना, तो अभी मान लो कि 5 साल बाकी है तो 5 साल में अपना काम ले कर ले वे, ऐसा इसलिए देखते हैं।
क्या करे, ते वस्तु एटली छे अने ते पण आत्माना ये हो गए ना,
हो गए पेज नंबर
नीचे वाणी द्वारा निकली वहां तक पढ़ाता
93
एवी अनंत पर्याय नो धरना। पर्याय तो एक ही है और ऐसी अनंत अनंत पर्याय चलती निकलती ही रहे। पहलू 131 गाथा में कहू ने मुत्ता इंद्रिय गेज्जा, अर्थात मूर्त ते इंद्रिय ग्राह्य छे, यानी मूर्त द्रव्य है वो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। शो इंद्रिय ग्राह्य छे एनी पर्याय, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा तो उसके पर्याय को जानते हैं, वो हल्का है क्या भारी है, कड़क है क्या नरम है, गर्म है क्या ठंडा है। पर्याय द्वारा गुण अने द्रव्य नो ख्याल आवे छे ने, શું કહ્યું એ મૂર્ત તે ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે, એ શું ચીજ ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે, દ્રવ્ય ગુણ આખી ચીજ, એ પર્યાય જે મૂર્ત છે તે ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય છે, એ દ્વારા પછી દ્રવ્ય ને ગુણ છે એમ નક્કી થાય છે, ઉસકે દ્વારા હમ નક્કી કરતે હૈ कि जिसमें वो स्पर्श रस गंध वर्ण उसकी पर्याय चल रही है वो पुद्गल द्रव्य है, ये हम नक्की करते हैं। अहिया अमूर्त एवं बाकी ना द्रव्यो ना गुणों कहे छे, ये हमने पढ़ा था। अभी नीचे टीका के ऊपर प्रवचन, जो बोल्ड लिखा है तो मूल टीका के शब्द है और उसके बीच बीच में उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे गुरुदेव। युगपत सर्व द्रव्यों ने साधारण अवगाहनु हेतुपूर्ण, साधारण इन्हें एट ए टाइम सबको कॉमन समान रूप से, दरेक द्रव्य ने एक समय में आहा जेनो गुण एटले जेनी पर्याय नु सामर्थ्य एक समय में बधाने अवगाहन अपवानी ताकत धरावे, वो भी उसकी पर्याय है ना, अवगाहन में निमित्त होता है तो वो तो प्रति समय वो तो बन रहा है कार्य, हर समय वो अवगाहना 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 देने का कार्य हो रहा है। तो जेनो गुण, गुण का अर्थ क्या गया, एटले पर्याय नु सामर्थ्य एक समय में बधाने अवगाहन अपवानी ताकत धरावे, और ऐसा हर समय चलता रहेगा, एक समय ना परिणाम मा हो एने गुण कहे। युगपत सर्व द्रव्यों ने साधारण एटले बधाने रहेवा माटे एकज एवं अवगाहनो हेतुपणु आकाशनो विशेष गुण छे, ए गुण शब्दे आकाशनो गुण जे अवगाहन छे एना वर्तमान परिणाम। क्या कहा, गुण का अर्थ क्या, यहाँ पर्याय के अर्थ में वर्तमान पर्याय के लिए गुण कहा, ये पद्धति है और बहुत जगह आता है पर्याय को गुण कहने के बाद, नियम सार में भी देखा और हर जगह यहाँ पर भी प्रवचन सार में भी बहुत बार आई हुई ये बात। सर्व द्रव्य ने रहेवा माटे अवकाश छे, सर्वज्ञ नु द्रव्य नु स्वरूप तो कोई अलौकिक बीजा द्रव्यो जाणवा एवं आवे छे ने शास्त्र मां तो आवे छे के प्रयत्न करीने जाणवा, पण एनो हेतु शुं। क्या कहा, शास्त्र में ऐसा आता है तो प्रयत्न पूर्वक तू छह द्रव्यों को जान, एने वो नक्की कर कि जो वस्तु विश्व में जो कई जो चीजें है द्रव्य है कौन से है कितने है उसका क्या स्वरूप है ये सब नक्की करना है, पण एनो हेतु शुं। ए जे द्रव्य गुण पर्याय छे एने एक समय ने पर्याय जानवानी ताकत राखे छे, एना माप माटे आ पर्याय नु ज्ञान करवुं, एनु ज्ञान पर्याय ना ज्ञान माटे करूं। फिर से यहाँ क्या लिखा है शास्त्रों में कि सभी द्रव्यों को जानना चाहिए और प्रयत्न पूर्वक जानना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो द्रव्य गुण और पर्याय जो अन्य छे तो उन सबको एट ए टाइम एक समय की पर्याय उनको जानने का सामर्थ्य रखती है, तो एना माप माटे आ पर्याय नु ज्ञान करूं, एनु ज्ञान पर्याय ना ज्ञान माटे करो, यानी वो सभी द्रव्यों का ज्ञान क्यों करना, क्यों अपनी ज्ञान पर्याय के माप निकालने के लिए सबका ज्ञान करना, तो ज्ञान पर्याय की एक समय की ताकत कितनी है, सबको युगपत एट ए टाइम एक समय में जाने ऐसी ताकत है, ये कह रहे यहाँ पर कि आ पर्याय नु ज्ञान करू, एनु ज्ञान यानी सभी द्रव्यों के जो हम पर्यायों की बात कर रहे हैं उसके पर्याय के द्वारा द्रव्य को नक्की कर रहे हैं, तो उनका जो ज्ञान करना है वो पर्याय ना ज्ञान माटे करूं, अने ए पर्याय मा आटलू जणाय तो आखा द्रव्य मा तो एवी अनंती पर्याय नी ताकत छे, एने एक समय की पर्याय में इतना सब जाना जाता है तो द्रव्य में तो ऐसी अनंत अनंत पर्याय है, और यह तो एकमात्र ज्ञान गुण की एक पर्याय की बात हो रही है, तो गुण की ताकत कितनी होगी कि हर समय ऐसे ऐसे ही जानते रहे जानते रहे जानते रहे, तभी भी कभी भी ताकत कम नहीं होगी, द्रव्य की सामर्थ्य कभी भी कूटेगी नहीं, अनंत काल तक केवल ज्ञान निकलता रहे तो खलास होगी कि नहीं, तो कहते नहीं कभी नहीं, ये कह रहे यहाँ पर। और एक ऐसा ज्ञान गुण है तो ऐसे अनंत अनंत गुण है द्रव्य में, सर्व द्रव्यों ने साधारण एटले बधाने एक देनार एवं अवगाहनानु निमित्त रूप आकाशनो गुण छे, आकाशना अवगाहन गुणना परिणामो ए गुण छे, है ना, अवगाहन गुण के पर्याय ये आकाश का वो निमित्त रूप भूतपना जो है ना अवगाहन हेतुत्व, हेतु है ने निमित्त, तो निमित्त कितने समय तक चलेगा इसलिए उसकी अवगाहन है गुण की पर्याय दी, और हर समय जगह देना जगह देना जो कार्य उसका चल रहा है, इसलिए उसको पर्याय लिया। हम तो अवगाहन गुण कह देते, पर यो गुण की पर्याय समझना। हमारे संप्रदाय में प्रश्न था तो, यानी जब वो गुरुदेव संप्रदाय में थे स्थानकवासी में, तब वहां कोई प्रश्न पूछते होंगे कि धर्मासीना केटला गुण, एक अरूपी अने गति बे, यानी दो ही गुण मानते थे। कौन सा? एक वो अरूपी है और गति है तो तू है। मूलचंद जी हता ने बैरिस्टर कहवाता, बोले गणु ने धर्मना बैरिस्टर, तो क्या कहते थे? धर्मासीना गुण बे, अरूपी अने गति कहो। आहा हा, पण एक द्रव्य एना परिणाम अनंत द्रव्यनी नासी रूपे छे, तो एक पर्यायनी शक्ति छे, एटली तो एक पर्यायनी शक्ति छे। ई अनंता गुणों थया, क्या कहते हैं? एक एक पर्याय में या एक एक द्रव्य में, अभी ये किसके बात चलेगी? धर्मासिकाय के। तो धर्मासिकाय में अनंत जीव है, तो अनंतों में से प्रत्येक जीव की उसमें नाशती है। पुद्गल अनंत अनंत है, वो प्रत्येक पुद्गल की उसमें नाशती है, वैसे अन्य द्रव्यों की नाशती है। एक बात नास्य ने उसमें नास्य वाला धर्म है ऐसा, कि जैसे हम कहते हैं जीव कैसा है, तो अरूपी है, अस्पर्शी है, तो पुद्गल के जो विशेष गुण है वो सारे नास्य रूप से इसमें वो धर्म है उसके, वो जीव में वो धर्म अस्थिर रूप से है, पर उसका कथन पुद्गल के जो गुण है उसके नास्य रूप से कह रहे हैं। जैसे पुद्गल में अरस नाम का गुण उसका अपना गुण है, अस्पर्श नाम का उसका अपना गुण है, अगंध नाम का उसका अपना गुण है जीव का, ऐसे ही हर एक द्रव्य में पर द्रव्य के जो गुण है वो नास्य रूप उसमें अनंत गुण तो ऐसे ही है। यहाँ क्या कहते, देखो अनंत द्रव्य नी नास्य रूपे छे, एटली तो एक पर्याय नी शक्ति छे। वो पर्याय की शक्ति कितनी? अभी जीव की शक्ति कितनी? वो अन्य अनंत द्रव्य रूप कभी न होना वो जीव की शक्ति है। धर्म द्रव्य की शक्ति वो अन्य अनंत द्रव्य रूप नहीं होने की रूप उसकी शक्ति है, अपनी शक्ति है। ये अनंता गुण थया, अनंत गुण पर्याय ने ताकत एटली। आहा हा, समझानू? उसके अपने गुण तो हो गए ही हो गए, जिसको हम कहेंगे ना उसके पॉजिटिव कथन वाले, पर ये अभावात्मक भी कितने गुण हो गए उसके, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुजीवी प्रतिजीवी कहते ना, वैसा उनमें भी हो गए। एक ही साथ है सर्व गमन परिणामी, हेतु लीधो छे वो अवगाहत्व लेनारा पोते पोता थी ले छे। क्या कहा? ये उपादान जो है वो स्वयं अपने से रहते हैं, परंतु वहां निमित्त रूप से आकाश को कहा है, इसलिए हेतुत्व यानी निमित्तपना बताया। वो अवगाहन देते हैं इसलिए जीव ठहरता है, ऐसा नहीं है। जीव स्वयं अपने कारण वहां ठहरता है, और वहां तो आकाश नाम का द्रव्य है, वो सबको एट ए टाइम अवगाहना देता है। यहाँ लिखे ना अवगाहत्व लेनारा, कौन है अवगाहत्व लेने वाले? जीव है के पुद्गल है? तक्षाबेन खाली दो है, अरे छह द्रव्य है। सभी द्रव्य तो अवगाहत्व लेनारा पोते पोता थी ले छे, अने प्रत्येक द्रव्य अपने स्वयं के उपादान से वहां उस जगह में ठहरा हुआ है। एमा पेलू निमित्त कहवाय छे, अवगाहना गुणनो परिणाम निमित्त कहवाय छे। गुण कहते हैं परंतु गुण कहने से उसका परिणाम लेना है। एम एक ही साथे सर्व गमन परिणामी, गमन करावनारा नहीं पण गमन परिणामी जे समय छे, एक ही साथे सर्व गमन परिणामी एने गति रूपे परिणमेला, वर्तमान परिणमेला एवा जीव पुद्गलों ने, एक समय में अनंत जीव अनंत पुद्गल गमन करते हैं, तो उन सबको एट ए टाइम सबको निमित्त रूप होना। हमें क्या लगता है? एक कार्य है उसमें निमित्त एक हो गए, या अनेक भी हो सकते हैं ऐसा हम देखते हैं, पर यहाँ तो कहते कि अनंतों का कार्य और निमित्त एक, अनंत जीव और अनंत पुद्गल एक समय में जो गमन कर रहे हैं उन सबके लिए एक निमित्त, कौन? धर्म द्रव्य। यानी ऐसा कोई ऐसा नहीं कि एक ही निमित्त सबके लिए नहीं होता, ऐसा नहीं है। एक ही कार्य के लिए निमित्त अनेक हो गए, वैसे अनेक अलग अलग जो जीवों के या अनेक द्रव्यों के कार्य के लिए निमित्त भी एक हो सकता है, ये देखा ना हमने
समोषण में।
हाँ,
समोषण में अनेक जीव सम्यक दृष्टि होते हैं।
हाँ,
निमित्त सर्वज्ञ परमात्मा,
हम कहेंगे उनकी वाणी कहेंगे, उस निमित्त का आरोप उस पर आता है। हाँ, कार्य जो होगा तो अपने अपने उपादान से ही होता है, पर यहाँ अन्य द्रव्यों की पहचान अपनी ओर से कराई है, हमारे लिए कौन सा निमित्त है इस इतना ही उनका परिचय कराया, ज्यादा क्यों नहीं किया, अरे बस इतना प्रयोजन है तेरे को, ये द्रव्य है बस इतना नक्की करना है, और तू उस रूप नहीं है, उनका कार्य तू नहीं कर रहा है, बस इतना नक्की करना है। तो एक ही साथ सर्वगमन परिणामी वर्तमान परिणमेला एवं जीव पुद्गलों ने जीव पुद्गलो आम गति रूपे परिणमेला समझानो काई भाई। हाँ, व्याख्या एवी जीवनी छे, बाकी बात हम कल पढ़ेंगे। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सुवाणी मस्तकनम सदा देत हो। नहीं हवे।